हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के बुधवार के कार्यक्रम में। कर्म की व्याख्या भगवान सांख्य योग दर्शन में दे रहे हैं, और पिछले हफ्ते हमने सुना भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि एक कृपण बनकर मत रहो। कृपण का अर्थ है जिसके पास कुछ होता है उसे वो इस्तेमाल नहीं करता और उसका फायदा नहीं उठाता। तो भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि योग जो कि मनुष्य के लिए स्थापित कर भगवान ने दिया है, उसमें जब कोई मनुष्य स्थित नहीं रहता तो जो मनुष्य की उपलब्धियां हैं, जो उसे प्राप्त करनी चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारी है, उससे वो मुंह मोड़कर भाग रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज का भी श्लोक भगवान अब अर्जुन को कर्मयोग की कुशलता क्या है, आर्ट ऑफ वर्क जिसे कहते हैं, वो बता रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाती
है
उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् युद्धाय युज्यस्व तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम्। बुद्धि योग में स्थित होकर हे अर्जुन, जितने भी शुभ तथा अशुभ कर्म हैं उनसे अपने आप को मुक्त करो। जहाती का अर्थ होता है मुक्त करना, परंतु यहां पर भगवान कह रहे हैं जहाती इह का अर्थ हुआ इसी जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी जीवन में अपने शुभ तथा अशुभ दोनों कर्मों से अपने आप को मुक्त करो। कैसे? तस्मात् योगाय युज्यस्व। योग का केवल प्रयत्न यदि तुम करोगे तो भगवान कहते हैं योग कर्म सुकौशलम्, वो योग की कुशलता है या कर्म की कुशलता है कि योग में स्थित होकर जो कर्म किया जाता है वो है कर्म की कुशलता, भगवान यहां पर बता रहे हैं। तो आज के हमारे चर्चा के विषय पिछले श्लोक से क्या संबंध है आज के श्लोक का, शुभ तथा अशुभ के परे ये जो स्थिति है आज भगवान फिर बता रहे हैं, योग ही कर्म की कुशलता है। तो पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहे कि कृपण से ब्राह्मण कैसे बनो, और हमारे आचार्य बताते हैं कि मानो अर्जुन को यह लग रहा होगा कि यदि मुझे ब्राह्मण बनना है तो फिर मुझे ये युद्ध करने की क्या जरूरत है। यदि भगवान मुझे ब्राह्मण बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण का अर्थ क्या था, जो बृहद हृदय वाला या उदार हृदय वाला जो है, केवल वो नहीं कि जो पंडिताई करता है वही ब्राह्मण है। तो अर्जुन को जब भगवान ये कह रहे हैं कि कृपण के विपरीत ब्राह्मण बनो, तो अर्जुन के मन में ये आशंका आई होगी, तो फिर मैं क्षत्रिय का ये कर्म क्यों करूं। तो भगवान अब यहां पर बता रहे हैं कि चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई क्षत्रिय हो, कर्म की कुशलता, कर्म तो सभी को करने हैं, कर्म की कुशलता कहां पर है। तो सर्वप्रथम भगवान कहते हैं उभे सुकृत दुष्कृते। उभे का अर्थ होता है दोनों, सुकृत और दुष्कृत, शुभ तथा अशुभ, इन दोनों के परे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि शुभ कोई कार्य करता है तो कहां जाता है, स्वर्ग में जाता है, और कोई अशुभ कार्य करता है तो नरक में जाता है। और वहां पर जो यमराज जी का जो मैनेजमेंट है, वहां पर कभी गलती नहीं होती, या स्वर्ग का भी जो मैनेजमेंट है वहां पर भी कभी गलती नहीं होती कोई गलती से। जैसे कि इस पृथ्वी में यदि कोई कहीं पे जाना चाहता है तो बहुत दूसरे तरीके भी होते हैं, यदि सही तरीके से उसको परमिशन नहीं मिल रही तो। जैसे कोई अगर अमेरिका, यूके, यूरोप, इन देशों में जाना चाहता है तो हालांकि उनके रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर भी कई भारतीय पहुंच जाते हैं बिना वीजा के, फर्जी जो कुछ बनाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम शुभ अशुभ और स्वर्ग नर्क की बातें करते हैं तो वेदों में बहुत ही प्रिसाइसली बताया गया कि इतना करने से कौन सा स्वर्ग या कौन सा नर्क, कौन से समय, कितने समय तक वहां पर रहोगे, किस अवस्था में, ये सब कुछ निर्धारित होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई स्वर्ग या कोई नरक में जा रहा है तो वो कर्म सुकौशलम का पालन कर रहा है, ये उसका अर्थ नहीं कि वो कर्म सुकौशलम का पालन कर रहा है, ये उसका अर्थ नहीं। क्योंकि जैसे एक नीति का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय राहु ने कुछ युक्ति, कुछ तरकीब निकालकर वो देवताओं की लाइन में बैठ गया। हाँ, आपको कथा पता है, देवताओं की लाइन में बैठ गया अमृत पीने के लिए, और अमृत यहां तक उसका पहुंचा था, राहु था ना, यहां तक उसका अमृत पहुंचा था, तब पकड़ में आ गया वो, और फिर यहां से उसका गला काट दिया गया। तो यह बताया गया है कि हालांकि राहुल ने अमृत पिया लेकिन फिर भी उसका गला काटा गया, और शिवजी के गले में सर्प है, जो कि सर्प हर समय विषैले होते हैं, तो हालांकि सर्प में विष है लेकिन फिर भी शिवजी के गले में एक आभूषण के रूप में, तो कोई नहीं बोल सकता है कि हां मेरे पास अमृत है तो मैं अमर बन गया हूं, या मेरी खुशहाली हो गई है, या मेरे जीवन में अशुभ चीजें हो रही। जैसे कि बचपन में हमको हमारे मास्टर जी ने एक कथा सुनाई थी अकबर और बीरबल की, तो अकबर बादशाह के महल में बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तो सभी जो डिपार्टमेंट्स वो अपना अपना काम अच्छी से करते, लेकिन ये बीरबल का क्या डिपार्टमेंट था किसी को पता नहीं, कि बस इसकी चतुराई है उसके वजह से इसका इंक्रीमेंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, बोनस इसको सबसे ज्यादा मिलता है, हम लोग इतना गदा मजूरी कर रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे थे इसको ठिकाना लगाना चाहिए बीरबल को। तो अकबर के राज्य में एक नाई था, पर्सनल नाई अकबर का, तो इस नाई ने हजाम जिसको बोलते, तो इस नाई ने एक युक्ति लगाई, तो अकबर के बाल सवार रहा था, सवारते सवारते नाई की आदत होती ना बोलना, बहुत बोलते वो बाल काटते समय, तो बहुत वो बातें कर रहा था, बादशाह क्या आपके केश हैं, ऐसे केश मैंने आज तक कभी किसी के नहीं देखे, काटने को दिल नहीं करता। तो अकबर एकदम फिर छाती और फूल रही थी, खुश हो रहा था अकबर। फिर वो नाई कहता है, बादशाह एक चीज मुझे अभी याद आ रही है, आपके पिताजी के भी मैं ऐसे ही केश काटा करता। क्या आपके पिताजी थे? अरे आपके पिताजी, ऐसे पिताजी का ऐसा ही पुत्र होगा, तो पिताजी का गुणगान शुरू कर दिया। तो आपके पिताजी तो अभी स्वर्ग में होंगे ना। तो अकबर कहता हां क्यों नहीं, स्वर्ग में होंगे। लेकिन आपको पता है कि क्या उनकी वहां पर कोई देखभाल ठीक से हो रही कि नहीं, कुछ कुछ जानकारी? अकबर ऐसे कैसे हम जानकारी निकाल सकते हैं, वो तो स्वर्ग में, अभी स्वर्ग में तो ठीक ही हो रहा होगा ना सब कुछ। तो नाई कहता है मेरे पास एक एक तांत्रिक जादूगर है मेरे जान पहचान का। ये तांत्रिक जादूगर ऐसा है कि ये किसी दूत को भेज सकता है स्वर्ग, और वो पता लगा सकता है कि आपके पिताजी वहां पर कौन सी स्थिति में अच्छे हैं, भले चंगे हैं कि नहीं। तो अकबर कहता अच्छा तो बुलाओ उसको, भेजते हैं किसी दूत को। तो नहीं कहा लेकिन ऐसे वैसे किसी को नहीं भेज सकते, वहां पर जो सबसे चतुर आपके राज्य का कोई मंत्री या दूत जो भी, केवल उसी को भेजा जा सकता है। तो अकबर और कौन है, बीरबल एक ही है पूरे राज्य में सबसे चतुर। तो फिर तुरंत सब योजना की गई, इस तांत्रिक जादूगर को बुलाया गया, और फिर अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई मुझे तो तुम्हें भेजना है, मेरे पिताजी की सारी जानकारी निकाल के आना। तो बीरबल समझ गया कि ये किसी की मिली भगत है, षड्यंत्र सब रच रहे हैं। तो पूछ लिया कि किसने आपको ये सलाह दी है? अरे अपना नाई। अच्छा तो बीरबल अब क्या, बीरबल तो सब चतुर नाइयों के भी बाप। तो बीरबल ने कहा अकबर से कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक महीना का टाइम दो, मेरे परिवार को सेटल तो करूं मैं इन लंबी यात्रा के लिए, तो एक महीने का टाइम दो मेरे परिवार को सेटल करने दो, और मेरी सब आमदनी जितने टाइम मैं नहीं रहूंगा पहले से मुझे दे दो, क्या पता क्या हो, वापस रिटर्न टिकट मिले कि नहीं मिले। तो अकबर हाँ ठीक है एक महीने बाद। तो सब अरेंजमेंट्स हो गया एक महीने के बाद। तो एक महीने में बीरबल ने किया क्या, इनकी योजना थी कि स्मशान जो घाट होता है वहां पर चिता में जीते जी अपने बीरबल को चिता में चढ़ाया जाएगा, और फिर वहां से वो जाएंगे स्वर्ग। तो बीरबल ने किया क्या कि चिता जहां पर उनको चढ़ाया जाने वाला था वहां से सुरंग खोद दी नीचे, सब लकड़ी वकड़ी अरेंजमेंट कर दिया, नीचे से सुरंग खोद दी। और फिर वो जब दिन आया अब इनको चिता पर चढ़ाने का, तो सब लकड़ी वकड़ी लगा दी और ये तांत्रिक जादूगर जो भी करने शुरू कर दिया, और फिर जब आग लगाई तो बीरबल वहां सुरंग से नीचे अपने घर पहुंच गए। और यहां पे सब देख रहे अरे बीरबल को जीते जी सती बनाया ऐसे। तो अब एक महीने बाद नहीं दो महीने बाद बीरबल आ जाते हैं। तो अकबर एकदम खुश, नाई परेशान। अकबर खुश लेकिन नाई परेशान, ये क्या वापस कैसे आ गया? तो अकबर अरे बताओ 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 कैसे, मेरे पिताजी कैसे? हाँ बहुत कुशल मंगल है, सब कुछ स्वर्ग में एकदम, पार्टियां चल रही हैं रोज, लेकिन तुम्हारा ये क्या हाल हो गया? तो बड़े बड़े बाल हो गए थे दो महीने बाद, तो बड़े बड़े बाल दाढ़ी हो गई थी। तो बीरबल ने कहा सब कुछ है लेकिन वहां पर नाई नहीं है, देखो मेरी हालत। तो आपके पिताजी मुझे यही बोले कि जाओ थोड़ा अकबर को बोलो एक नाई को भेजने का। अच्छा नाई नहीं उधर, बुलाया जाए नाई को, वो तांत्रिक जादूगर को बुलाया जाए, चढ़ाओ इसको चिता। तो इस भौतिक संसार में स्वर्ग और नर्क, ये कहा जाता है कि दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों जेल के अलग अलग विभाग हैं, बस जेल के अलग अलग विभाग हैं ये, इसलिए भगवान कह रहे हैं उभे सुकृत दुष्कृते, कि इन दोनों के परे हे अर्जुन तुम्हें जाना है इस कुशल योग या कर्म योग के द्वारा। अब भगवान ने कहा जहाती है, जहाती हमने इसका अर्थ सुना मुक्त हो जाना, कि तुम मुक्त हो जाओ, किससे, सुकृत और दुष्कृत इन दोनों से मुक्त हो जाओ। और इह का अर्थ है इसी जीवन में और इसी संसार में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति योग के विषय में बताया गया है कि यदि कोई प्रामाणिक तरीके से भक्ति योग या बुद्धि योग में लगता है तो यह आश्वासन भगवान यहां पर दे रहे हैं। किसका किसका प्रॉमिस है ये, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रॉमिस है, जहाती है कि इसी जीवन में और इसी संसार में वो इनसे परे उठकर वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। अब वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में द बॉल इज इन अवर कोर्ट, भगवान ने तो बोल दिया और सारी प्रणाली भी दे दी बुद्धि योग या भक्ति योग की, अब हम उसे कितने प्रामाणिकता से उसका पालन कर रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। जैसे कि हाल ही में मैं एक विद्यार्थी से एक काउंसलिंग कर रहा था उसका, तो उसने मुझे ये प्रश्न पूछा कि कितने समय से मैं कर रहा हूं ये 16 माला, हां कुछ तो फर्क पड़ा है लेकिन जो मैं पढ़ता हूं 16 माला करने के बाद जो पढ़ता हूं कि ये सब हो जाएगा वो सब हो जाएगा, हरि नाम ये हरि नाम वो है, वो तो कुछ दिखता नहीं है, ऐसा ऐसा तो नहीं हो नाम बड़े दर्शन खोटे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ड्राइविंग आता है, ड्राइविंग, मैं कहता आता है, स्विमिंग आता है, आता है। तो यदि मैं पूछूं कि किसी व्यक्ति को तुम निर्धारित कर सकते हो कि इतने समय में इसको ड्राइविंग आ जानी चाहिए, इतने समय में इसको स्विमिंग आ जानी चाहिए, नहीं, कई लोग तो तुरंत कोई एक हफ्ते में सीख ले, कोई स्विमिंग तो एक दिन में सीख लेता। तो यहां पर जो व्यक्ति है कैंडिडेट है उसके ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रामाणिकता है किसी चीज को सीखने में, और वो चीज उतने ही जल्द तुम सीख पाओगे। तो यहां पर हरिनाम या भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें कोई कमी नहीं है, जो स्टूडेंट है जो कैंडिडेट है उस पर निर्भर करता है। एक ही क्लास में कोई टॉपर आ रहा है, कोई वहीं पे 5-year plan बना रहा है, तो यूनिवर्सिटी तो एकदम रिकग्नाइज्ड है और प्रोफेसर और जो भी कुछ वो भी सब एकदम क्वालिफाइड है, तो कैंडिडेट पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान यहां पर ये बोल रहे हैं कि अर्जुन, और ये भगवद्गीता का उदाहरण बहुत उपयुक्त है कि अर्जुन ने भगवद्गीता सुनी, धृतराष्ट्र ने भगवद्गीता सुनी, संजय ने भगवद्गीता सुनी, तो भगवद्गीता तो बहुत लोग सुने हैं लेकिन परिणाम से पता लगता है कि कौन वास्तविक रूप में यह कृपा प्राप्त कर पाया है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, हालांकि छोटा सा ये शब्द है लेकिन बहुत इसका प्रोफाउंड मीनिंग है, यह इसी जीवन में और इसी संसार में। तो अब यदि हम पूछें कि इसी जीवन में इसी संसार में मेरे कर्म का क्या, जो शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, तो ये 3 प्रकार के कर्मों के मध्य में हर एक जीव वो जी रहा है या उसको ये कर्म जिला रहे हैं, जो भी जिला रहे हैं, मरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये 3 प्रकार के कर्म। तो सर्वप्रथम यदि हम देखें संचित कर्म, संचित कर्म का अर्थ है हमारे कर्म के भंडार। यह नहीं समझना चाहिए कि आज जो मैंने कर्म किया बस, और जो मैं 20 साल पहले पैदा हुआ था बस उतना ही नहीं, बहुत से जन्मों से हमारा बहुत हमने स्टॉक करके रखा है, गोडाउन भरे पड़े हमारे कर्मों के गोडाउन, और कोई उसका साइज लिमिट किसी को पता नहीं, खाली हाँ यमराज जी इनको सबको पता है लेकिन हम बद्ध जीवों को नहीं पता। तो संचित कर्म कहते हैं हमारे कर्म के भंडार को। क्रियामाण कर्म जो वर्तमान अब हम भुगत रहे हैं, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, शुभ अशुभ सुख दुख लाभ हानि इत्यादि, ये है क्रियामाण कर्म वर्तमान जो हम भुगत रहे हैं। और प्रारब्ध कर्म कहते हैं, ये प्रारब्ध कर्म हमारे कर्म के भंडार से कुछ स्टॉक निकालकर वो इस जीवन के लिए निर्धारित निश्चित रख देते हैं प्रकृति कि हाँ चलो इसका जीवन इतना, इसके लिए इसके इतने कर्म स्टॉक से निकाल के रख देते हैं। तो वो कहते हैं प्रारब्ध कर्म भविष्य के हमारे कर्म फलों की जो निश्चितता है उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तभी आप लोग चिंतित हो गए होगे, बाप रे तभी करें क्या करें, पीछे इतना बड़ा भंडार, वर्तमान में जो चल रहा है उसका ही लिस्ट खत्म नहीं हो रहा है, और आप बोल रहे हो कि आगे प्रारब्ध में भी वहां पर भी लाइन लगी हुई है, पीछे भी वर्तमान में भी, तो क्या करें फिर। इसलिए एक सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत में जिसमें बताया गया है कि जितने सारे हमारे संचित प्रारब्ध क्रियमाण जितने सारे कर्म हैं, इन कर्म को केवल एक रबर से इरेज कर सकते हैं, एक इरेजर से। तो यह उदाहरण श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में है जहां पर कृष्ण भक्ति की तुलना सूर्य से की गई है, और जितने ये सारे हमारे कर्म हैं इसकी तुलना कोहरे से की गई है। कोहरा, कोहरा जानते हैं, फॉग। तो यहां पर अजामिल की जो कथा छठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं, तो अजामिल का उदाहरण देते हुए कि अजामिल ने इतने कुकर्म किए और उसने अच्छे कर्म भी किए थे, उसने पुण्य कर्म भी किए थे और इतने पाप भी किए थे, लेकिन जब वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लग गया और वो भी अनजाने में, कौन सी भक्ति में, भगवान के नारायण नाम उच्चारण करने में, और ये बताया गया था कि वो अपराध युक्त नाम नहीं था, अजामिल ने जो उच्चारण किया नारायण, हालांकि अपने पुत्र को पुकार रहा था लेकिन उसमें उसका कोई अपराध नहीं उसने किया था, इसलिए विष्णुदूत आकर यमदूत से अजामिल को बचाते हैं। तो अजामिल जो भक्ति में लगा, अनजाने में जो भक्ति में लग गया, उसके संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी ये सुंदर श्लोक सुनाते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्स्नेय निहारम इव भास्कर। भास्कर का अर्थ क्या होता है, सूर्य। निहार का अर्थ होता है फॉग या कोहरा। तो जैसे ही हम देखते हैं कि कहीं पर कोहरा छाया हुआ है तो धीरे धीरे अलग अलग स्थितियां देखिए कि जैसे ही सूर्य अब उगा ही है तो कोहरा थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन सूर्य की किरणें उस कोहरे को भेद कर हमें रोशनी दे रही, और जैसे सूर्य और ऊपर उठता जाता है उसकी गर्मी और बढ़ती जाती है तो अपने आप जो कोहरा है, कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कोहरे को निकालने के लिए, सूर्य ऊपर बढ़ रहा है, रोशनी बढ़ रही है, चढ़ रही है उसकी, अपने आप कोहरा। तो यहां पर इन चित्रों में आप देखो कि जैसे सूर्य ऊपर उठता रहता है तो कोहरे का जो इंटेंसिटी है वो कम होता रहता है। तो यहां पर हमारे आचार्य बताते हैं कि हम हमारे जीवन में जितने सारे ये संचित क्रियामान प्रारब्ध कर्म लेके बैठे हुए हैं, ये सब उस कोहरे के समान है जिसके वजह से कई बार एक्सीडेंट्स इतने होते हैं कोहरे के वजह से, आगे दिखता नहीं कुछ, कि कोई चल रहा है आपका खुद का स्वयं का हाथ आपको दिख नहीं सकता, कई बार इतना वो गहरा होता है वो कोहरा। तो सूर्य को हम अर्थात कृष्ण भक्ति को हम कितना अपने जीवन में प्रवेश दे रहे हैं, इस पर निर्धारित करेगा कि हमारा कोहरा कितना कम होगा। यदि हम सूर्य की रोशनी को बहुत ही कम मात्रा में आने दे रहे हैं हमारे जीवन में, तो हां सूर्य की रोशनी तो रहेगी लेकिन उसके साथ वो कोहरा भी रहेगा। इसलिए साधक के जीवन में देखा जाता है कि दोनों चीज, हाँ कृष्ण के प्रति भी थोड़ी थोड़ा आकर्षण है उसको, लेकिन उसके साथ साथ वो कोहरे में भी रहना चाहता है, उसमें थोड़ा मजा आता है। एकदम पूरा धूप में चले जाएंगे तो पसीना पसीना हो जाएंगे, तो थोड़ा कोहरा अच्छा है, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, थोड़ी भक्ति भी चलती रहनी चाहिए, ये भी नहीं छूटना चाहिए। अरे ये भी तो भगवान द्वारा बनाया गया है ना, ऐसा बोलते हैं। तो बनाया क्यों भगवान ने फिर इंद्रिय भोग, बनाया क्यों इंद्रियां, क्यों बनाई विषय वस्तु, क्यों बनाए? तो ये सब हम फिर फिलॉसफी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर केचित केवल या भक्ति या इस श्लोक में कहा गया है, केवल आ भक्ति अर्थात पूर्ण रूपेण एज इट इज सन, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं, केवला भक्ति। वो जब कोई अपने जीवन में करता है तब जाकर ये सारे जो संचित प्रारब्ध, इसलिए भगवान जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, हमने इसकी व्याख्या पहले भी की कि इस श्लोक में, ये जो प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, इस श्लोक में भगवान ने दो दफा सर्व ये इस्तेमाल किया है शब्द, सर्व एक सर्व पापे भी है ना, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता, अरे सारे पाप मेरे जितने संचित प्रारब्ध जितने सारे लिस्ट बताए सारे पाप भगवान दूर कर देंगे। हां सर्व, लेकिन उसके पहली वाली लाइन क्या है? ये सर्व पापेभ्यो पहली लाइन नहीं है श्लोक की, इसके पहले भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य, और सर्व धर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि जितने हमने हमारे कार्यक्रम बना रखे हैं इंद्रिय भोग के, उन सब का परित्याग कर कर जब हम भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होंगे तो वो सर्व परित्याग होगा, तो सर्व पापेभ्य, सर्व परित्याग नहीं होगा तो यहां पर भी सर्व पापेभ्य नहीं होने वाला। इफ वी पार्टली रिनाउंस और इफ वी पार्टली सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा विल ओनली पार्टली रिलीव अस फ्रॉम अवर सिनफुल रिएक्शन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो भी श्लोक भगवान ने बोला है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हां शास्त्रों में सब ये भी बताया गया है कि हम कौन कौन से कर्मों में अपने आप को फांस चुके हैं, लेकिन निकलने का उपाय भी बहुत ही सरल बनाया है। इसलिए बोलते हैं ना, एक ऐसा कभी भी ऐसा कोई ताला निर्माण नहीं करता बिना चाबी के, ताला है उसके साथ चाबी अवश्य है। अभी हमारी चाबी खो चुकी होगी या जंग उस पर चढ़ चुका होगा चाबी के ऊपर, इसलिए जब साधना भक्ति में लगते हैं तो चाबी को घिस घिस के फिर से ओरिजिनल स्टेट में लाते हैं, ताकि वो जो ताला है, कौन सा ताला, हमारी समस्याओं का ताला, वो हम खोल सकें। तो अब भगवान आगे श्लोक में कह रहे हैं तस्मात योगा या युज्यस्व, इसका अर्थ ये है हे अर्जुन तुम भक्ति योग या बुद्धि योग के लिए केवल प्रयास करो। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमको पूरा कोर्स करना है, सर्टिफिकेट जब तक तुम नहीं हासिल करोगे भक्ति शास्त्री का, नहीं, भगवान कह रहे हैं केवल प्रयास करने मात्र से। हमने कुछ हफ्ते पहले वो श्लोक लिया था कि एक भक्त का बॉस कौन होता है, अभक्त का बॉस कौन होता है। तो यहां पर एक भक्त केवल यदि प्रयास कर लेता है, इच्छा करता है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, तो भगवान कहते हैं कि मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं स्वयं जो भी कुछ फिल इन द गैप्स बोलते हैं ना, वो पूरा उसका मैं भर देता हूं। लेकिन प्रयास हमारी तरफ से भगवान अपेक्षा कर रहे हैं। तो भौतिक प्रयास किस प्रकार का है? राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि इस भौतिक संसार की तुलना मकड़ी के जाल से की गई है। देखा मकड़ी का जाल, तो मकड़ी बहुत सुंदर तरीके से अपना जाल बनाती है, और ये मक्खी जो अब इस मकड़ी के जाल पर आकर बैठी है, तो ये मक्खी कोई मकड़ी का जाल एकदम, वो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं हैमॉक, हाँ वो होते ना बीच पर, वैसे वो नेट का दो पेड़ पे बांध देते हैं और उसमें झूलते हैं वो लोग, वो भी मकड़ी के जाल के जैसे ही दिखता है, उसको अंग्रेजी में हैमॉक बोलते हैं। तो ये मक्खी जब बैठती है तो मक्खी को बहुत एकदम स्प्रिंग एक्शन लगता है, अरे क्या मजेदार बनाया मेरे लिए, हाँ तुम्हारे लिए बनाया। वो मकड़ी भी कहती तुम्हारे लिए बनाया है। और फिर कुछ समय पश्चात जब वो उड़ने का प्रयास करती है मक्खी, तब उसे समझ में आता है कि ये तो एक जाल था। और फिर वो जितना प्रयास करती है बाहर निकलने का, ये हालत फिर उस मक्खी की होती है, क्योंकि वो भौतिक प्रयास कर रही है। उस वो मक्खी जो है वो भौतिक प्रयास कर रही है यहां से बाहर निकलने का, लेकिन यहां से इस जाल से बाहर निकलने का उपाय क्या है? कोई तीसरा व्यक्ति अगर उस मक्खी को वहां से उठाए, कोई तीसरा व्यक्ति उठाए, तो ये तुलना की गई है भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है, कि जो भक्त वो अपने प्रयासों से इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कितने ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि भगवान के चरण कमल वो नाव की तरह हैं, ये भव सागर है, हम अकेले इस भव सागर को कोई भी कितना भी बड़ा तैराक हो, वो साधारण से समुद्र को नहीं तैर के पार कर सकता, भव सागर को क्या हम पार करेंगे। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि हाँ ये प्रयास कर रहा है, इसलिए भगवान ने यहां पर कहा अर्जुन तुम केवल प्रयास करो, और भगवान ने सिद्ध भी किया कि ये युद्ध तुम नहीं जीतने वाले, तुम केवल तुम प्रयास करो, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं जो बागडोर संभाला हूं ना तुम्हारे रथ की, ये पूरे जितने सारे रथ हैं इस रणभूमि पर उन सबकी बागडोर मैं ही संभाला हूं, और जितने सारे जीव हैं उन सबके जीवन की बागडोर भी मैं ही संभाले हूं, तुम प्रयास करो बस। तो यहां पर प्रयास का इतना महत्व भगवान बताए हैं। अब योग कर्म सुकौशलम, जिसका अर्थ है द आर्ट ऑफ वर्क। भगवान यहां पर अर्जुन को केवल ये नहीं कह रहे कि तुम बस लड़ो, नहीं, वो बहुत क्रूर हो जाता है, बहुत ग्रोस हो गया, बस लड़ो। भगवान कह रहे हैं कि तुम लड़ो लेकिन कुशलता से लड़ो, आर्टिस्टिक वॉर, यदि हम उसको अंग्रेजी में उसका अनुवाद करें, अर्जुन यू फाइट आर्टिस्टिक वॉर। ये क्या होता है आर्टिस्टिक वॉर, क्या होता है इसका अर्थ? यह है कि जो निर्धारित कर्म अर्जुन के लिए था, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना जो निर्धारित कर्म अर्जुन का था, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इस कर्म को केवल अपना निजी कर्म मत मानो। जब तुम अपना निजी कर्म मानोगे, उसमें जब योग नहीं रहेगा, तो उसके अंदर कोई कुशलता नहीं देखेगा। इसलिए कर्म के अंदर कोई कुशलता नहीं, लेकिन कर्म योग के अंदर कुशलता है। और कर्म के अंदर क्या है जो हमने पिछली स्लाइड देखी, वो भौतिक प्रयास, वो केवल कर्म है बस, उसके अंदर वो और बनता जाता है। लेकिन योग जब भगवान के लिए वही किया जाता है तो वो क्या है, प्रेम के द्वारा। और प्रेम के द्वारा जब कोई कुछ कर्म करता है तो वो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से करता है कि नहीं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं किसी का जन्मदिन है, हाँ, तो अभी रेडीमेड बर्थडे कार्ड्स मिलते हैं, आर्चीज, आर्चीज के रेडीमेड बर्थडे कार्ड्स मिलते हैं। तो वो जो कंपनी वाला है जिसने भी वो बर्थडे कार्ड्स इतने सारे अनगिनत बना रखे हैं, उसको नहीं पता है कि ये किसके बर्थडे के लिए मेरा कार्ड कहां जाने वाला है। तो उसने जो भी उसमें लिखा होगा वो खुद के हृदय से नहीं लिखा होगा। लेकिन जब आप वो बर्थडे कार्ड खरीदते हो और फिर आप उसके अंदर कुछ लिखते हो और जब देते हो किसी को, तो वो व्यक्ति जो आर्चीज कंपनी ने लिखा है उस पर गौर नहीं करता है, आपने जो भी टूटी फूटी हैंडराइटिंग में लिखा है उस पर गौर करता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहां पर ये जो भी खुद लिखकर मुझे दिया है वो उसका प्रेम है। उसको बोलते हैं कौशलम, आर्ट। तो यदि हम अब देखें कि कुशलता का अर्थ क्या है, तो तीन अर्थ कुशलता के बताए गए हैं, निपुणता, जागरूकता और एकाग्रता। अब आप जाओ, बहुत से सेमिनार बाहर चल रहे होंगे जिसके अंदर कॉर्पोरेट सेमिनार्स में लोग कहते हैं कि कैसे आप कंपनी में एकाग्रता अपनी दिखाओ और निपुणता, एक्सपर्टीज। जागरूकता का अर्थ है अलर्ट और एकाग्रता का अर्थ है कॉन्सेंट्रेटेड। सो विथ एक्सपर्टीज, बींग फुल्ली अलर्ट, वन शुड वर्क विथ कॉन्सेंट्रेशन। इसे कहते हैं कुशलता। अब कौन नहीं एक्सपेक्ट करता कि इस प्रकार से कोई कर्म करें। हमारे एक जो कोच थे एयरफोर्स में, हमारे स्पोर्ट्स के जो कोच थे, तो वो हर समय केवल शारीरिक कोचिंग नहीं देते थे हमको, थियोरी थियोरी भी होता था उसके अंदर। फिजिकल ट्रेनिंग में थियोरी, आपको लगता होगा फिजिकल ट्रेनिंग में थियोरी क्या जरूरत है, चलो मैदान में उतरो, निकालो पसीना थोड़ा, फिर समझ में आएगा। तो वो थियोरी बताते थे कि ये सारी चीजें बताते थे, अभी मुझे याद आ रहा, तो ये सारी चीजें बताते थे कि कैसे एक स्पोर्ट्समैन को एकाग्र, अलर्ट और एक्सपर्ट, ये तीन चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर वो कुशल कोई भी एथलीट या स्पोर्ट्समैन वो बन सकता है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ उदाहरण वहां के लेने के लिए स्पोर्ट्स के। अब यदि हम जिसे कहते हैं हर्डल रेस, और हमारे जीवन को भी एक हर्डल रेस माने हम, हालांकि हम लोग सब आराम से कुर्सी पे बैठे होंगे अभी, लेकिन जीवन में हमको इसी प्रकार की रेस दौड़नी पड़ती है। कौन सी रेस? ये हर्डल रेस। तो ये हर्डल रेस में ये जो भी एथलीट है इसको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है हर्डल रेस का। उसको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि उसके ऊपर से कूदना है, उसको गिराना नहीं, उसको टच नहीं करना है, उसके ऊपर से कूदना है और स्पीड भी मेंटेन रखना। ऐसा नहीं चल नीचे से चले जाए, गिराना नहीं है ना तो नीचे से चले जाए, नहीं ऊपर से जाना है, नीचे से नहीं जा सकते। और जब बंदूक की गोली ऊपर गई, यहां से शुरू दौड़ना और स्पीड भी उसके साथ साथ मेंटेन रख, तो मतलब आपका ट्रैक देखना, ऐसा नहीं कि बगल वाले से शुरू कर दिया आपने, फिर कह रहे उसका थोड़ा नीचा दिख रहा है, आपकी ट्रैक पर ही आपको भागना है। तो यहां पर निपुणता, अलर्टनेस और कंसंट्रेशन, ये तीनों एक साथ जब उसके आते हैं। तो हमको उसने उदाहरण इसका दिया था, इसे कहते हैं पोल वॉल्ट। ये हमसे एक बार करवाया भी था, बहुत मुश्किल होता है ये, आपको पता है क्या है, बांबू लेके भागते हैं। आपको लग रहा होगा कामगार हैं क्या, बांबू लेके भाग रहे हैं, पेंटर हैं क्या? तो ये पोल वॉल्ट में इनको क्या क्या देखना पड़ता है, एक तो वो जो पोल है वो पोल को बराबर, वो जो खांचा होता है वो खांचे में अटका के आपको ऊपर उठना है, वही सबसे मुश्किल है। वो खांचे में ही नहीं घुसता है, उसको लेके भागो, वो खांचे में घुस जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वहां पे पहले कॉन्सेंट्रेशन, और ऐसा नहीं कि बस खांचे में घुसा दिया तो मेडल मिल जाएगा आपको, नहीं, फिर उसके बलबूते पे आपको उसको इतना बेंड करना है कि वो जो बांबू है आपको ऊपर लेके जाए। इतना ऊपर रहता है ये, नीचे हम दिखा नहीं रहे लेकिन बहुत हाइट रहता है उसका, देखा होगा आपने। और फिर ये जो ऊपर वाला बांबू है उसके ऊपर से जाना है, उसको गिराना नहीं, और फिर इसको छोड़ना, इसको ऐसा नहीं कि इसको पकड़ के रखो, ये तो सारा एक, अब ये जो बांबू हाथ में लिया उसको छोड़ना है, उसको टच नहीं करना है। तो देखो कितना उसके अंदर ये तीन चीजें, उसको एक साथ उसका पालन करना पड़ता है, एक्सपर्टीज, अलर्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है, पीटी की क्लास चल रही है, गीतामृत चल रहा है, पीटी की क्लास चल रही है, क्या हो रहा है? कि कोई भौतिक रूप से इतना एकाग्र हो सकता है? आज हम आपको एक 8-7 मिनट का एक वीडियो दिखाएंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये एकाग्रता, निपुणता और जागरूकता, जो कि कुशलता के लक्षण हैं, कि कोई भौतिक रूप से कैसे पालन कर कुशल बन सकता है, दिखाएंगे थोड़ी देर। तो ये इसलिए बताए गए हैं, जैसे कि मदारी का खेल या देसी स्टाइल में बहुत देखा होगा पहले, तो आपको पहला सब विदेशी दिखाया था, अब देसी, तो इसमें भी वही गुण चाहिए, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो। टाइट रोप के ऊपर डमरू बजा रहा है कोई, नीचे जमूरे चल, सब इकट्ठा हो गए, जमूरा ऊपर है तो, और उसके कई कई चीजें क्या क्या करते हैं वो लोग, वो हाथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने स्थापित किया था, वो ना नायगरा फॉल्स के एक ओर से दूसरी ओर, वो ऐसे, पता नहीं नायगरा फॉल्स पता, वो इतना बड़ा, वो जो झरना सबसे ऊंचा बताया गया है, वहां एक साइड से दूसरे साइड उसने बांध के, और इस व्यक्ति ने बीच में जब पहुंच गया, वो पूरा अमेरिका देश देख रहा है, सब जगह टीवी ये चैनल लगे हुए हैं, और वो बीच में पहुंचने के बाद उसने वो निकाला, क्या नाम, सिगड़ी निकाली, स्टोव, और उसमें उसने अपना नाश्ता बनाया। और वो बोलते यही जगह मिली तुमको नाश्ते करने, तो बेचारे जो बैठे बैठे नाश्ता खा रहे थे उनका नाश्ता नीचे नहीं जा रहा था। तो क्या क्या लोग अपने कुशलता का प्रदर्शन करने के लिए, तो इसलिए अभी हम आपको जो वीडियो बता रहे थे वो दिखाएंगे। इसमें ये नहीं कि केवल ये मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जा रहा है कि बहुत हो गया, इतने टाइम से कुछ दिखाया नहीं है, तो खाली गीता ही गीता सुनाते रहते हैं, हम सब टीवी बंद करके आते हैं यहाँ पे, अपना बड़ा त्याग करते हैं। नहीं तो आप इसमें केवल पॉइंट ध्यान में रखना, नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग कि पॉइंट मुद्दा ये है कि हमारे भक्ति के कर्मों में जब तक हम ये तीन तीन चीजें ध्यान रखें, जागरूक है ना, हाँ? देखते समय भी जागरूकता, एकाग्रता और निपुणता। एक मेरे ख्याल से लाइट्स थोड़ा बंद कर सकते। हरे कृष्णा। मंदिर में ही हम बैक टू भगवद गीता। तो आपने देखा कि हालांकि एक भौतिक उपलब्धि थी, लेकिन उससे सीख हम क्या लेते हैं कि एक ऐसे कार्य करने के लिए व्यक्ति को वो जो तीन चीजें हमने डिस्कस की उसमें अगर एक भी कम हो तो ये नहीं कर सकता था जो उसने किया। तो भगवान अर्जुन को यहां पर यही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल कुशलता से एक ही कार्य कर पाओगे। इसका लास्ट आपने देखा, उसने एक डंडी निकाली, सब कुछ नीचे गिर गया। तो भौतिक संसार में जितना भी हम एकाग्र रहें या जागरूक रहें, निपुण बने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो एक डंडी निकाल देगा। हाँ, कोई फूंक मार देगा, कोई गुदगुली कर देगा तुमको। ये भौतिक प्रकृति ऐसी है, चाहे जितना भी हम प्रयास करें, हाँ हम उस शिखर तक पहुंच जाते हैं उपलब्धि की, और वहां से एक डंडी निकाल दी, सब तिथर बितर हो जाता है, एवरीथिंग बैक टू स्क्वायर वन जैसे बोलते हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं यहां पर कि भक्ति की कुशलता क्या है। ये हमने क्यों दिखाया कि इसमें हर चीज इतनी प्रिसाइज थी, वो लकड़ी का वेट और उसका मूवमेंट्स और हवा, वहां पर कितना हवा का दबाव कितना है, कितना सब कुछ एक एक प्रिसाइज होना आवश्यक था वहां पर इस फीट को हासिल करने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, हालांकि बोल रहे हैं कि योग कर्म सु कौशलम, कि कुशलता का अर्थ क्या, निपुणता, जागरूकता और एकाग्रता, लेकिन इसी के साथ भगवान बोल रहे हैं प्रयास भी केवल तुमने किया तो वो, ये जो तीन पॉइंट्स है ना, भगवान अपनी तरफ से हमको शक्ति देकर करवाते हैं। इसलिए एक भक्ति योगी जो होता है वो चाहे उपलब्धि प्राप्त करे या ना करे, उसे पता है कि भगवान मुझे ये कुशल कर्म करवा रहे हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था जटायु का और मारीच का, तो वैसे ही भगवान जब यहां पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि केवल तुम अर्जुन इसका केवल तुम प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम कुशलता को अवश्य ही प्राप्त करोगे। इसलिए ये उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य, ये है पारा, हो जाता है ना कभी कभी पारा हाई हो जाता है, तो मर्क्यूरी ये इसे जहर बताया गया, हाँ इसे पॉइजन बताया गया, लेकिन वही मर्क्यूरी, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं वैद्यराज, तो वही मर्क्यूरी को आयुर्वेदिक मेडिसिन में अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ उसका कॉम्पोजिशन कर वही किसी को स्वस्थ बना सकता है। ठीक है, बराबर। तो अपने आप में वो है जहर, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशन करो और उसका बराबर प्रोपोर्शन में आप उसको यूज करो तो वही स्वस्थ बन सकता है। और इसका विकृत उदाहरण है कि कोई अच्छा ताजा फल है, उसका दारू भी बना सकता है कोई। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो इस भौतिक संसार के कर्म है वो मर्क्यूरी के जैसे, अपने आप में जहर है वो इस भौतिक संसार के कर्म, वो प्रयास जो हमने देखा, लेकिन उसके अंदर जब हम एडिशन करते हैं किसका एडिशन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का, जो भगवान ने आज के श्लोक में कहा योग कर्म सुकौशलम, कि केवल कर्म नहीं कहा, कर्म की कुशलता नहीं बताई, वो कर्म जिसमें एडिशन किसका हुआ है? योग का, अर्थात भगवान का। तो जैसे उस कर्म में भगवान का एडिशन हो जाता है, इसलिए कहते हैं ना आध्यात्मिक जीवन सब कुछ छोड़ना नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण को जोड़ना, जस्ट एड कृष्णा इन वॉट एवर वी डू। तो वही जो जहर है इस भौतिक संसार का, वो हमारे स्वास्थ्य का कारण बन सकता है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। और इसे कहते हैं द रियल आर्ट ऑफ वर्क, योग कर्म सुकौशलम। तो अर्जुन ने क्या किया? वही लड़ाई की, और लड़ाई अपने आप में कोई पुण्य कर्म नहीं है, मर्क्यूरी के जैसे, लेकिन उसने एडिशन क्या कर दिया अर्जुन ने? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का एडिशन किया, धर्म का एडिशन किया। और वही लड़ने का जो कार्य है वो अर्जुन के लिए मुक्ति के द्वार खोल दिया, और वही लड़ने का कार्य दुर्योधन के लिए इस भौतिक संसार में बंधन का कार्य बना। तो योग सुख कर्म कौशलम का अर्थ है कि वही हम कर्म भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में जब करते हैं तो हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, नहीं तो इस भौतिक संसार में ही जन्म और मरण के चक्र में हम फंसे रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है? एक बार मैं वीडियो दिखाया था तो ये इस पूरा पॉइंट्स वगैरह बताने के बाद जब प्रश्न पूछा तो एक ने पूछा ये वीडियो मिलेगा? तो उसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।